सोलह नंबर के रजिस्टर में 17488 का कंसेप्ट लगा रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बच्चे अब तो पहचान गए हैं कि हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाले हैं। बच्चों को इस खुशी में रहना है। कौन सी खुशी? सिखलाने वाला हमको माता पिता अर्थात बाप ही है। अभी तो हम वेद के बाप के बने। प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं, बाबा अभी हम आपके ही हैं, हम हैं ईश्वर के, अब असुरों के संबंध में नहीं है। क्या प्रतिज्ञा बताई? संबंध भी किस आधार से करना है? संबंध संपर्क भी जो बढ़ाना है वो किस आधार पर बढ़ाना है? बाप के संबंध संपर्क के आधार पर संबंध और संपर्क में आना। तो अब हम किसके संबंध में नहीं है? असुरों के संबंध में नहीं, क्योंकि असुरों का बाप से संबंध टूटा हुआ है। हम आसुरी मत पर नहीं चलते। आसुरी मत किसको कहा जाता है? जो स्त्री मत पर नकल आसुरी कर्म करते हैं उनकी मत आसुरी मत कही जाती है। एक है ईश्वरीय कर्म और दूसरा है आसुरी कर्म। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ईश्वरीय कर्म क्या है और उसका रिजल्ट क्या है? ईश्वरीय कर्म है सुख देना, स्वर्ग की दुनिया लाना, स्वर्ग आएगा, सुख से होता है स्वर्ग। और आसुरी कर्म है दुख देना और उसका रिजल्ट होता है नरक। विद्वान पंडित आचार्य ये नहीं जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया था। और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं, बौद्ध जानते हैं कि 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध ने आकर के बौद्ध धर्म स्थापन किया। क्रिश्चियंस जानते हैं 2000 साल पहले क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। सभी धर्म वाले जानते हैं, सिर्फ भारतवासी हैं जो अपने असली धर्म को भी भूले हुए हैं, उस धर्म के रचयिता धर्म पिता को भी भूले हुए हैं और टाइम भी भूले हुए हैं कि वो धर्म कब स्थापन किया था। सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया, देवी देवता धर्म तो अब है नहीं, तो फिर बतावे कौन? लक्ष्मी नारायण आदि का कोई पता नहीं है, बाप कोई नहीं जानते तो बेमुख हो गए। तो ये भी ड्रामा में नूद है। ऐसा जब हो तब तो बाप महाबाकी उच्चारे कि कोई भी विद्वान पंडित नहीं जानते कि कलयुगी पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप आकर के हम बच्चों को फिर से राजयोग सत्य के लिए सिखलाते हैं। तुमको वैकुंठ का मालिक बनना है, कृष्णपुरी में जाना है, यह तो कंसपुरी है। कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। या तो कंस का राज्य होगा या फिर कृष्णपुरी होगी। दिखाते हैं कंस का डर था इसलिए कृष्ण को टोकरी में ले गए। अब कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस और कंसी जरासिंह भी दुख देने वाले, ये तो हो गए कलयुग के। तो बात तो लगती नहीं, फिर बात कहाँ की हुई? जरूर संगम युग की ही बातें हैं, सत्यवी कृष्ण की ये बातें नहीं है। संगम युग में ही कृष्ण की सोल ब्रह्मा जब अपना शरीर त्याग देती है तो वही कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके संगमिधि कृष्ण का पाठ बजाती है। ब्राह्मणों की संगमिधि दुनिया में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है और कंस की जरा सिंधी उसके पीछे पड़ते हैं। तो कृष्ण के लिए जो उसको सुरक्षा देने वाले माता पिता का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, कृष्ण को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के जो बीज हैं, उनके लिए दिखाया है कि कृष्ण को टोकरी में डाल के ले गए। टोकरी कौन सी हुई? ये है बुद्धि रूपी टोकरी। किसकी बुद्धि रूपी टोकरी? राम बाप की बुद्धि रूपी टोकरी, जिसमें कृष्ण को रखा गया सुरक्षित और विषय वैतरणी नदी से पार किया गया, यमुना नदी को, काली नदी को। तो ये सब बातें हैं कलयुग की नहीं, सतयुग की नहीं, संगमयुग की। तो ये सब फिर सतयुग में कैसे हो सकता है? कृष्णपुरी स्वर्ग को और कंसपुरी नरक को कहा जाता है। यहाँ ही पूतनाएं सुपनखाएं आदि हैं, अनेक प्रकार के आसुरी नाम हैं। नाम है शास्त्रों में काम के आधार पर। तो पूतना ने क्या काम किया? पूत माना पवित्र और ना माने नहीं, अर्थात जो पवित्र नहीं रही, जात जाति का विष पीती रही, उसका नाम पड़ा पूतना। विष पीने पिलाने वाली को कहा जाता है पूतना। और सुपनखा, हाँ, जो झगड़ा टंटा करवाए देती है, अपने दिल की इच्छा कुछ और, कामना की पूर्ति नहीं होती है तो कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं। तो काम की आस पूरी नहीं हुई तो उलट पुलट बोल करके झगड़ा करवा दिया, धूता धूती का काम कर दिया। कंसी जरासिंधी शिशुपाल गौओं को चुराने वाला, ये सब आसुरी नाम हैं। अब तुम बच्चों को फखुर होना चाहिए कि हमको अब परम पिता परमात्मा सहज राजयोग सिखलाए रहे। बाप कहते हैं हम परम धाम से आया हूँ, इतनी ऊंची स्टेज से आया हूँ तुम्हारे पास, जिससे ऊंची स्टेज और कोई होती नहीं, परे से परे धाम, जो सब की पहुंच से परे। ऐसे ऊंचे धाम में रहने वाला इस नीचे पतित दुनिया में आया है पतितों को पावन बनाने, राजयोग सिखलाने। पुरानी इस रावण की दुनिया में आए हैं, पुराने चोले में आए हैं। जैसे मनुष्य पितर खिलाते हैं तो वह आत्मा पुराने शरीर में आती है ना, तो बाप क्या खाने आए? पितरों के लिए तो कहते हैं स्वर्गवासी हुए, तो जो स्वर्गवासी हुए उनको नरक का भोजन खिलाने के लिए क्यों बुलाते हैं? वास्तव में वो कोई स्वर्गवासी तो होते नहीं, ये तो सिर्फ एक साक्षात्कार मात्र है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा की भी आत्मा इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आती है, गंदे वायुमंडल के बीच पतितों को पावन बनाने के लिए। तो पितरों का मिसाल दिया, तो जो पुराने शरीर में आती है पुरानी दुनिया में आती है उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं। ये रस्म रिवाज भारत में चली आती है। रस्म रिवाज सब प्रकार की शुरुआत कहाँ से होती? संगम युग से। तो हम ब्राह्मणों की दुनिया के पितर कौन है? मम्मा और बाबा। तो मम्मा बाबा की सोल को बुलाए, फिर उनको खिलाते हैं, खिलाते हैं, भोग लगाते हैं। तो ये हुई भावना, क्योंकि वो तो सूक्ष्म शरीरधारी है। कहते हैं हमारे पति की आत्मा इस ब्राह्मण में आई है, तो वो भावना रखते हैं, पति के नाम रूप को याद करते हैं। आत्मा ही आकर के अंगीकार करती है। तो ये हुई यहाँ की रस्म रिवाज। तो कृष्ण की सोल भी अपना पुराना चोला छोड़कर, या तो सूक्ष्म शरीर से या तो बीज रूप चोले से, क्योंकि तीन प्रकार के रूप गाए हुए हैं, रूप हैं आत्मा के। एक कारण शरीर जिसे बीज रूप आत्मा कहते हैं, और दूसरा सूक्ष्म शरीर, और तीसरा स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते हैं, वो तो गुलजार दादी के द्वारा पाठ चला, लेकिन बीज रूप स्टेज में जो प्रवेश होता है उसका पता नहीं चलता कि कब आया और कब गया। तो बीज रूप स्टेज में जो पार्ट संसार में प्रत्यक्ष होता है संगम युगी कृष्ण का, उसके लिए ये भोग आदि लगाने की रीति रस्म रिवाज चल रही है। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं है, तो ये कहाँ की बातें हुई? जरूर संगम युग की बातें हुई। वहाँ सतयुग में फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, ये भक्ति मार्ग की रस्म होती है, ये सब होती नहीं। भावना रखने से अल्पकाल का सुख मिलता है, तो भी बाप से मिलता है, बाप तो कभी दुख नहीं देते। मनुष्य तो न जानने के कारण ऐसे ही कह देते हैं, सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। क्या न जानने के कारण? इस परमात्मा का कार्य क्या है? और रावण संप्रदाय आसुरी आत्माओं का कार्य क्या है? परमात्मा तो कभी दुख नहीं दे सकता, क्योंकि परमात्मा पार्ट है संसार को सुखी बनाने के लिए। अगर किसी को उस पार्ट से दुख की महसूसता होती भी है, तो ये उसकी अज्ञानता है। सब कहते हैं कि परमात्मा ही सुख देता है, परमात्मा ही दुख देता है। अगर परमात्मा से दुख मिलता भी है, तो वो दुख अनेक जन्मों के लिए सुख का साधन बन जाता है, इसलिए वो दुख दुख नहीं है, क्योंकि ये हिसाब किताब है। सुप्रीम सोल बाप के साथ तो कोई हिसाब किताब होता नहीं पूर्व जन्मों का, जो सुख दुख सहन करना पड़े। हिसाब किताब किसके साथ होता है? साकार के साथ। तो रामकृष्ण वाली आत्माओं के साथ जिसने जो जैसा व्यवहार किया है, सुख दुख का लेन देन किया है, वो उजूरा इस अंतिम जन्म में मिलना जरूर है, 100 गुना, 1000 गुना और लाख गुना रूप में। क्योंकि यहाँ प्राप्ति भी 100 गुना है, 1000 गुना है, लाख गुनी है, तो फिर अप्राप्ति भी उतनी ही। अगर उलट कर्म किया तो 100 गुनी, 1000 गुनी, लाख गुनी अप्राप्ति। बेसिक नॉलेज में जब चले, बेसिक ज्ञान लिया, तो 100 गुना दंड भोगना पड़ता है। उसी पाप का, जो पाप हम दुनिया में 63 जन्म करते रहे उसका एक गुना पाप चढ़ता था, और बेसिक नॉलेज में आने के बाद 100 गुना। फिर एडवांस नॉलेज में आए तो ज्ञान एडवांस लिया है, तो स्थिति भी एडवांस होनी चाहिए। और फिर अगर पाप किया तो 1000 गुना पाप का बोझ पड़ता है। उसमें भी जो टीचर्स की पदवी पर दूसरों को पढ़ाने के निमित्त बने हुए हैं या पढ़ाए रहे हैं, उनसे अगर कोई उलट कर्म होता है तो उनके ऊपर 1,00,000 गुना बोझ करता है उसी पाप कर्म का। तो परमात्मा बाप आकर के कोई सुख दुख नहीं देते, ये दोनों कार्य परमात्मा के नहीं है। परमात्मा तो सुख ही देता है, लेकिन रामकृष्ण की आत्माओं के थ्रू जो जिसका हिसाब किताब नुधा हुआ है वो यहाँ पूरा जरूर होगा, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि ब्रह्मा ने यानी कृष्ण की सोल ने पास्ट में 69 से पहले ब्राह्मण बच्चों को सुख दिया, किसी को दुख नहीं दिया। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी इस बात को नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको टेढ़ी आंख से देखा या कोई कड़ी बात कह दी या हमको किसी प्रकार से दुख दिया, नहीं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ब्राह्मण बच्चों ने ब्रह्मा बाबा को दुख नहीं दिया। ऐसे ऐसे बिच्छु किंडन थे बड़े बड़े डंक वाले, जिन्होंने उसे ब्रह्मा के हार्ट को फेल कर दिया, इतना दुख पहुंचाया, कड़ी बात कहकर, जिसका गायन शास्त्रों में है कि बहेलिए ने तीर मारा। तीर कोई लोहे के थोड़े ही मारा, कोई बात का ही तीर मारा जाता है तो तीर घायल करता है, दुख देता है। तो कृष्ण के पांव प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन शास्त्रों में यादगार कहाँ की है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की। तो जिन बच्चों ने रामकृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति दुख देने का पूर्व जन्मों में हिसाब किताब बांधा है या इस संगम युग में हिसाब किताब बांधा है 100 गुना 1,000 गुना 1,00,000 गुना, उनका हिसाब किताब करने के निमित्त कौन बनेगा? कोई दूसरा निमित्त बनेगा क्या? रामकृष्ण की ही सोल, रामकृष्ण के ही व्यक्तित्व निमित्त बनेंगे ना। तो परमात्मा सुख दुख नहीं देता, सुप्रीम सोल किसी को सुख दुख नहीं देता। सुख दुख का हिसाब किताब किसका है? रामकृष्ण की सोल का है। इस बात की गहराई को न जानने के कारण कह देते हैं कि परमपिता परमात्मा ही सुख दुख देता है। बाप समझाते हैं बच्चे ये खेल बना हुआ है, ये खेल खेला किसने? बच्चों ने ही खेल खेला ना, सुख देने और दुख देने का। तो जो खेल खेला है उसका रिजल्ट तो जरूर सामने आना है। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वो ही आकर के ब्राह्मण बनेंगे। देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो ब्राह्मण भी नहीं बनेंगे। तो जो ब्राह्मण बनेंगे उनको मालूम पड़ जाता है, उन ब्राह्मणों का सब मालूम पड़ जाता है कि ये हमारे कुल का है अथवा नहीं। उन्होंने बहुत भक्ति की है। किन्होंने? जो देवता कुल के होंगे, आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के होंगे, उन्होंने आदिकाल की आदिकाल से अब व्यभिचारी भक्ति की होगी और बहुत भक्ति की होगी, क्योंकि जितनी भक्ति की होगी उतना ही ज्ञान उठा लेंगे। जितनी अब व्यभिचारी भक्ति की होगी उतना ही अब व्यभिचारी ज्ञान उठाएंगे, नहीं तो दूसरों से भी मत लेते रहेंगे, आसुरी मत भी लेते रहेंगे, मन मत भी चलाते रहेंगे। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बाप आप आकर के कहते हैं अब मैं भक्ति का फल देने आया हुआ हूँ। जिसने जो और जैसी और जितनी भक्ति की है 63 जन्मों में, उस भक्ति का फल देने के लिए आया हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि आकर के वापस चला गया और भक्ति का फल मिल गया। भक्ति का फल क्या होता है? भक्ति का फल ज्ञान। सिर्फ ज्ञान किससे मिलता है? भगवान से। तो भक्ति का फल है भगवान मिल जाता है। भगवान सिर्फ ज्ञान देकर नहीं चला जाता, भगवान से क्या मिलता है? अनेक जन्मों की सुख और शांति का वर्षा, शांति धाम सुख धाम का वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। तो बाप आया, क्या ये वर्षा मिला? चलो शरीर को प्रैक्टिकल में नहीं मिला, प्रैक्टिकल में सुख धाम नहीं आया, तो क्या मन बुद्धि को सूक्ष्म में मिला? मन बुद्धि की ज्ञान के आधार पर ऐसी स्टेज बनी कि कोई हमें दुख दे तो हम दुख स्वीकार न करें, बदले में हम उसको सुख दें। अगर मन बुद्धि की भी ऐसी स्टेज नहीं बनी तो क्या परमात्मा बाप मिला? हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, तो हम कहाँ होने चाहिए? हेवन में होने चाहिए ना, हेवन का सुख अनुभव करना चाहिए ना। करोड़पति अरबपति का बच्चा हो और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो तो कहेंगे कि वो बाप के करीब है, नजदीक है या संबंध टूटा हुआ है? जरूर बाप का बच्चा नहीं है, प्रैक्टिकल में संबंध टूटा हुआ है, इसलिए दुखी। तो यहां भी जो बच्चे ये समझते हैं कि परमात्मा ही सुख देता है, परमात्मा ही दुख देता है, उनको अपने दिल से पूछना है कि हम परमात्मा बाप के बने हैं, परमात्मा बाप के नजदीक पहुंचे हैं। जैसे कोई शरीर छोड़ता है, आत्मा जाकर के जन्म लेती है दूसरे माँ बाप के यहाँ, तो जहाँ जन्म लेती है वहाँ पहुंचती है ना, नजदीक गोद में पहुंच जाती है ना, पेट में पहुंचती है ना। तो यहाँ भी बच्चों को देखना है कि हम बाप के दिल तख्त पर चढ़े हुए हैं, बाप की मन बुद्धि में हम, मेरा स्थान कहाँ पर है। तो सुख दुख परमात्मा नहीं देता, ये तो हिसाब किताब है, खेल बना हुआ है। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वो ही आकर के ब्राह्मण बनेंगे, और अगर देवी देवता धर्म का नहीं होगा, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा तो आएगा, तो लेकिन बाप का बनने के बाद फिर चला जाएगा, पूरा देवता नहीं बन सकेगा, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ सकेगा। तो पता पड़ जाता है कि हमारे कुल का है या नहीं है या कन्वर्ट होने वाला है। तो निशानी बताई जिन्होंने बहुत भक्ति की है, जिन्होंने आदिकाल की अभिविचारी भक्ति की है वो पढ़ाई भी अभिविचारी पढ़ेंगे। एक से ही मत लेंगे, कोई दूसरे से मत नहीं लेंगे, दूसरे के चक्कर में नहीं आवेंगे। वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बाप आकर कहते हैं अब मैं भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति में तो बहुत दुख होता है, कितना भटकना पड़ता है, क्योंकि भगवान को सर जाती समझ लिया। तो जो सामने आया वही गुरु बन करके बैठ गए, उसी गुरु को भगवान का रूप समझ लिया, और ज्ञान मार्ग में भटकने की बात नहीं। ज्ञान माना ज्ञान, जानकारी, जानना माना ज्ञान। किसको जानना? अपने आप को जानना और अपने बाप को जानना। जब अपने बाप को जान लिया तो फिर बच्चे को इधर उधर भटकने की क्या दरकार? अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ, अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाप कब उल्टी मत नहीं देंगे। जरूर कोई बच्चे ये अनुभव करते हैं कि बाबा ने हमें उल्टा रास्ता बता दिया, बाबा हमको कम प्यार करते हैं, दूसरे को ज्यादा करते हैं, हमको टेढ़ा रास्ता बताते हैं, दूसरे को सीधा रास्ता बताया। तो बाप कब उल्टी मत नहीं देंगे? सन्मुख आकर के श्रीमत देते हैं। कोई बच्चे समझते हैं कि बाप आकर पढ़ाई पढ़ा के चला जाता है, फिर जो पढ़ाई पढ़ाई है उसको हम रिवाइज करते रहेंगे और उस रिवाइज रिवीजन से हम मत लेते रहेंगे। तो जो पढ़ाई पढ़ाई है, बाप आकर जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान सन्मुख ही लिया जा सकता है करेक्ट रूप में। सन्मुख जब नहीं होते हैं तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहता। जो सन्मुख सुनाई जाए वही गीता, और जो सन्मुख न सुना जाए वो गीता ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि टैप रिकॉर्ड में रखा जाएगा, उसमें भी हाव भाव नहीं होंगे, उसमें वाइब्रेशन नहीं होंगे, दृष्टि का फोर्स नहीं होगा, तो अर्थ बदल जाएगा। तो छपी हुई वाणी में तो ढेर गलतियां हो सकती हैं। उस छपी हुई वाणी में तो जो लिखने वाला है, टाइप करने वाला है, छापने वाला है, वो भी गलती कर सकता है, जानबूझ करके भी गलतियां कर सकता है। तो वो श्रीमत नहीं रह जाती, उसमें फिर मन मत या मनुष्यों की मत, गुरुओं की मत मिक्स हो जाती है। तो बताया कि सन्मुख आकर बाप श्रीमत देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज है जो कोई की बुद्धि में बैठ करके मत देता है। ये तो सब रावण, ये ड्रामा में नूद है। रावण कोई की बुद्धि में बैठ करके मत नहीं देता है, ये तो संग के रंग में आते हैं स्वतः अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार। और जब संग का रंग लग जाता है तो मत भी लेने लग पड़ते हैं। तो मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं, माया के कारण पतित बनते हैं। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे फिर पतित बनना शुरू करेंगे, तो ये बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था, साधु संत आदि सभी देखे हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं, बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे। कोई बच्चे के तन में नहीं आवेगा, बच्चा बुद्धि के तन में भी आकर के बाप बाप के रूप में परमात्मा पार्टी नहीं बजा सकता। ब्राह्मणों की दुनिया में भी हर प्रकार के ब्राह्मण है, कोई तो बिल्कुल ही बच्चा बुद्धि है, जितना बाप ने बोल दिया बस उतना ही समझेंगे, उसके गुह्य अर्थ को समझने के लिए बुद्धि का मनन चिंतन मंथन नहीं चल सकता।
16 नंबर के रजिस्टर में 142 पेज पर दूसरा पेज शुरुआत 17-4-88 का पहला क्लास। भगवान ने ये एक ही रथ क्यों लिया, ये भी संशय आता है तो बताया इसका कारण कि एक ही रथ क्यों लिया, एक ही मुकर्रर रथ क्यों, जरूर उसकी भी कोई हिस्ट्री होगी। क्या हिस्ट्री बताई, जो आदि सो अंत, भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है, रथ माना शरीर और भाग्यशाली शरीर, कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली, शास्त्रों की बात बताई ना, तो भागीरथ से निकली या शंकर की जटाओं से निकली। भागीरथ ने तो तपस्या की और तपस्या करके कहते हैं गंगा लाई, लेकिन तपस्या किसकी गाई हुई है, तो इससे साबित हुआ कि जो भागीरथ है वो ही शंकर का पार्ट है, वो ही भाग्यशाली रथ है। भाग्यशाली वो है जो अनेकों को कल्याण करे शरीर के माध्यम से, जो अनेकों का कल्याण न कर सके अपना भी कल्याण न कर सके वो भाग्यशाली कैसे हुआ। तो अब कोई पानी के गंगा तो नहीं निकली है, तो कितनी मूर्खता है जो समझते हैं कि उनकी जटाओं से पानी की गंगा निकली, वास्तव में मस्तक के मनन चिंतन मंथन से ये ज्ञान निस्सृत होता है, तो ज्ञान की गंगा बहती है, कोई पानी की गंगा की बात नहीं है। आगे हम भी समझते नहीं थे कि ये कैसे हो सकता है कि जटाओं से गंगा निकले, इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भाग्यशाली रथ तो ये ब्रह्मा का हुआ ना, कौन से ब्रह्मा का, यह ब्रह्मा का हुआ ना, तो जब यह कहा तो इशारा किस तरफ किया होगा, अपनी तरफ, क्योंकि जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, जो रथ कार्य को संपन्न कर दे वही रथ भाग्यशाली रथ हुआ। दूसरी मुरली में बोला हुआ है यह तो रथ ही है जो सारे विश्व को हेवन बनाने वाला है, सारी वर्ल्ड को हेवन बनाता है, तो कौन सा रथ है, जिस रथ से सारा वर्ल्ड हेवन बन जाता है। दादा लेखराज का टाइटलधारी ब्रह्मा का रथ नहीं, जरूर वो आदि वाला रथ जिसे पूर्वी बंगाल से पकड़ा गया, वही रथ अंत में निमित्त बनता है। तो जिसमें परमपिता परमात्मा आते हैं उसे कहा जाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा भी दो हुए, एक सिर्फ ब्रह्मा और एक प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य तो मुझ जाते हैं, इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे, तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो, ब्रह्मा तो भगवान है और सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, और बाबा मुरली में कहते हैं कि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में मैं आता ही नहीं, मैं किस तन में आता हूँ, मैं तो पतित तन में आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए, पावन सन्यासी के तन में नहीं आ सकता, फिर पतितों को पावन बनाने का कार्य भी नहीं हो सकता। सूक्ष्म वतनवासी पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं, तो पवित्र होते हैं, तो पवित्र में परमात्मा की प्रवेशता नहीं होती। तो मनुष्य मुझ जाते हैं, कि तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो, ब्रह्मा तो भगवान है, सूक्ष्म बतन में रहने वाला है, तुम फिर इस मनुष्य को ब्रह्मा नाम क्यों रख दिया? ऐसे ऐसे कहेंगे। क्या बोला? ऐसे ऐसे कहेंगे। गे माने कब? आगे भविष्य में। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ही ये पार्ट चलेगा कि जो अज्ञानी मनुष्य होंगे, मुझे हुए ज्ञान की गहराई को न समझने वाले, वो इस तरह बोलेंगे। यह तो इनों की कल्पना है, ऐसे कह देंगे। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कहाँ से आए? मनुष्यों की तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। वो समझते हैं ऊपर कोई सूक्ष्म बतन है जहाँ से ब्रह्मा विष्णु शंकर आए। तो सूक्ष्म बतन कोई ऊपर नीचे होने की बात नहीं है, ये तो ऊंची स्टेज की बात है। जिन ब्राह्मण बच्चों ने पहले पहले ऊंची स्टेज बनाई, मनन चिंतन मंथन की स्टेज बनाई, तो वो ही ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। मनुष्य कुछ नहीं समझते। अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यहाँ होंगे ना? कौन से ब्राह्मण, कैसे ब्राह्मण? ब्राह्मण माने ब्रह्मा की औलाद। जो ब्रह्मा मुख की बात न माने वो हाफ कास्ट ब्रह्मा कुमार हो गया, ऐसे भी मुरली में बोला। ब्रह्मा मुख वंशावली है तो जो ब्रह्मा मुख से कहे वो मानना पड़े, ये भी बाबा का महावाक्य। अगर ब्रह्मा मुख से निकले हुए महावाक्यों को कोई नहीं मानता तो वो ब्राह्मण की लिस्ट में नहीं है। फिर सबसे मुख्य विशेषता है ब्राह्मण की, ब्रह्मा मुखवंशावली जो बच्चा है, तो ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चे आपस में क्या हुए? भाई बहन। तो जिनकी भाई बहन की स्टेज बनी गई वो हुए पक्के ब्राह्मण। अगर नहीं बनी तो हो गए हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो शास्त्रों में तो देखो क्या क्या लिख दिया है, जो कुछ हो चुका है सो तो फिर भी होगा। लिख दिया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, मुख से निकले तो जरूर मुख वंशावली होंगे, यानी मुख से जो बात सुनाई उस बात पर आकर्षित होने वाले और अपने जीवन को न्योछावर करने वाले वो हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अगर मुख से निकली हुई बात पर अपने को निछावर नहीं किया, परमात्मा के ज्ञान के ऊपर अपने को सरेंडर नहीं किया, सिर्फ ब्रह्मा की गोद से प्यार किया, माना चिकने चुपड़े शरीर से प्यार किया और वो शरीर ही उनको याद आता है, बाप का डायरेक्शन याद नहीं आता, यह सुनी अनसुनी कर देते हैं। जैसे मुरली में बोला ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, समझाने के लिए तो त्रिमूर्ति में दिया हुआ है, अलग से चित्र रखने की कोई दरकार नहीं। अगर ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो पतित हो पड़ेंगे। तो जिन्होंने मुखवंशावली ब्राह्मण होने का दावा किया और डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया तो वो हाफ कास्ट ब्रह्मा कुमार हुए या फुल कास्ट हुए? हाफ कास्ट हुए। तो जो कुछ हो चुका है वो ही फिर भी होगा। मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, ये सब फिर भी होगा। तुम ड्रामा के राज को जानते हो, और कोई इस राज को जानता नहीं है, वो तो कह देते ड्रामा की आयु लाखों वर्ष है, फिर कहते प्रलय भी होती है, सब कुछ खलास हो जाएगा। प्रलय माना प्रमाना प्रकृष्ट रूपेण, लय माना लीन, सब कुछ लीन हो जाएगा। अच्छा, सब लीन हो जाएगा तो नई सृष्टि कहाँ से आवेगी? कहते हैं ऊपर से सितारे आत्माएं आवेंगी और नीचे आके प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे, चित्रों में बनाई के दिखाई दिए। बाप कहते हैं ऐसे प्रलय कभी होती नहीं है। अब कृष्ण अगर आएगा तो भी सत्ययुग में आएगा ना, उनको फिर द्वापर में क्यों ले गए? जब पूछा गया कि द्वापर में कृष्ण को क्यों ले जाया गया शास्त्रों में, तो पूछने वाला कौन है? भगवान बोल रहा है ना, तो पूछ रहा है तो जरूर उसे प्रश्न का कोई अर्थ भी होगा ना, जवाब भी होगा ना। क्यों ले गए द्वापर में? द्वापर में इसलिए ले गए कि शूटिंग का महत्व जिन्होंने लिख दिया कि द्वापर में कृष्ण पैदा हुआ, वो शूटिंग की बात को भूल गए। सिर्फ बुद्धि में ये संस्कार रह गया, उस संस्कार के आधार पर उन्होंने लिख दिया। वास्तव में ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जब द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत होती है तो कृष्ण की सोल अर्थात ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे के द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाती है, भागवत के द्वारा। भागवत है कृष्ण का चरित्र, नाम ही रखा है भागवत, माना कृष्ण के भगाने की कला। कोई दुनियावी तरीके से नहीं भगाया, मन बुद्धि को आकर्षित किया ज्ञान के आधार पर। तो द्वापर युग में कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है, ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म अनुदा हुआ है। प्रलय तो कभी होती नहीं है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएंगे, आकर के पावन बनाएंगे। ऐसे नहीं आकर के पढ़ाई पढ़ा के चला जाए और चले जाने के बाद फिर पतितों को पावन देहधारी धर्मगुरु बनाते रहेंगे। इसलिए बोला कि जब गायन गाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आवेंगे और आकर के पतितों को पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ, इसलिए पतितों को पावन बनाने के लिए एक बार आता हूँ। तो फिर ब्रह्मा के तन में आए पहली बार सो किस लिए, और उससे भी पहले यज्ञ के आदि में किसी तन में आए प्रजापिता में, वो किस लिए? एक बार आए या दो तीन चार बार आए? फिर ये भी बोला अच्छी अच्छी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, उनमें बाप आकर के डायरेक्शन देते थे, प्रवेश करते थे, तो तीन चार बार आना हुआ ना। तो यहाँ ये क्यों बोला कि बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ एक बार पतितों को पावन बनाने के लिए?
आने के बाद जाते नहीं
है?
आने के बाद जाते नहीं
है? आने के बाद जाते नहीं है? तो एक बार आए या चार बार आए? है? हाँ, यहाँ शब्द दिया हुआ है बाप, यानी बाप बाप के रूप में जब पार्ट बजाता है तो वो एक ही बार में आकर के पतितों को पावन बनाता है। मैं ज्ञान सागर ही सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज समझा सकता हूँ, पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ सो बैठे बच्चों को समझाता हूँ। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर मैं कोई नई दुनिया बैठे रच देता हूँ, नहीं, सृष्टि तो अनादि है, ये तो चली ही चली आती है, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदलकर मैं नई दुनिया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया का संगठन चेंज करके नया संगठन बनाता हूँ। तो कैसे बनाता हूँ नई दुनिया सो बैठे बच्चों को समझाता हूँ, कैसे बनाता हूँ उस पुरानी दुनिया की भी बात नहीं है, ये परमात्मा बाप की है डबल मशीनरी। पहले पुरानी दुनिया के शूद्रों को लेकर के उनको ब्राह्मण बनाना, और फिर ब्राह्मणों को शिक्षा देकर फिर ब्राह्मणों को देवता बनाते। तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में से ही नई दुनिया बनती है, ब्राह्मणों का पुराना संगठन खलास होता है और नया संगठन उदय होता है। तो कैसे नई दुनिया बनाता हूँ सो बैठे बच्चों को समझाता हूँ, वो हद के घर की बात होती है। यह है बेहद का घर, जैसे हद का घर बनाते हैं तो छत डालेंगे तो नीचे जो आधार देंगे वो आधार थोड़े समय के लिए होता है, बाद में छत जब मजबूत हो जाती है तो आधार निकाल देते हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में कुछ आधार मूर्त आत्माएं हैं। नई दुनिया बनाने के लिए उनका आधार दिया हुआ है। जब नई दुनिया का संगठन तैयार हो जाता है, पावरफुल आत्माएं निकल आती हैं, वारसदार बच्चे निकल आते हैं, तो आधार निकाल लिया जाता है। तो वो है हद के घर की बात है और ये है बेहद के घर की बात। बाप का तो प्यार रहता है ना, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं, मनुष्य तो कर न सके। कहते हैं ईश्वर ने सुख का जन्म दिया, किसके पास बहुत पैसे होते हैं तो कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है। फिर अगर वो ले लेते हैं तो दुख क्यों होता है? दुख तो नहीं होना चाहिए। अब बाप कहते हैं और कोई की बातें मत सुनो, सिवाय एक बाप के कोई की बात नहीं सुनो। बाप, टीचर, गुरु तीनों रूप में पार्ट बजाए दिखाई रहे हैं। बाप का भी पार्ट बजाता उसी रूप से, एक्सप्लेन करने वाले टीचर का भी पार्ट बजाता उसी रूप से, और अंत में सदगुरु का भी पार्ट, सख्त पार्ट बजाता उसी रूप से। तीनों रूपों का पार्ट, एक ही परमात्मा पार्ट, एक ही पर्सनालिटी के द्वारा बजाया जाता है, क्योंकि सदगति दाता है एक। अंधों की लाठी एक प्रभु है, पतितों को पावन बनाने वाला। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आया हुआ हूँ। वो भी तो पतित ठहरे ना, क्योंकि नाम ही है साधु। साधु माना साधना करने वाला, इंद्रियों को साधने वाला, इंद्रियों के साधने की प्रैक्टिस करने वाला। जरूर इंद्रियों में क्षरण होता है, इंद्रियों में शक्ति का पतन होता है, उस पतन को रोकने की कोशिश करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, अमोघ वीर्य हो नहीं पाते। तो मैं आकर के उनको रास्ता बताता हूँ, उन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तो जरूर वह भी पतित है, क्योंकि मन बुद्धि रूपी आत्मा का जब तक क्षरण हो रहा है, उसमें दुष्ट संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तब तक पूरी सदगति नहीं हो सकती। तो वो तो घरघाट को छोड़ देते हैं, देह और देह के संबंधों को तिलांजलि दे देते हैं, देह को दुख देते हैं, लेकिन मन बुद्धि तो उनको तंग करती रहती, दुष्ट संकल्प उनके अंदर भी आते रहते। तो मन बुद्धि आत्मा का जब तक उद्धार नहीं किया, तब तक असली उद्धार नहीं हो सकता। तो ऐसे गुरुओं को, ऐसे साधुओं को कन्याओं के द्वारा बाण लगवाते हैं। कौन से? बाहर की दुनिया के साधुओं को। बाहर के दुनिया की साधुओं की बात नहीं है, ये ब्राह्मणों की दुनिया के ही साधु हैं, जो हठ योग पूर्वक अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल कर नहीं सकते। उल्टा रास्ता अपनाने के कारण और ही बस से बेबस हो जाती हैं इंद्रियां। तो उनको छोटी छोटी कन्याओं के द्वारा बाण लगवाते हैं, जो बड़े बड़े वो काम नहीं कर सके, वो कार्य छोटी छोटी कन्याएं करके दिखाती है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, सतयुग में था प्रवृत्ति प्रवृत्ति पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, और अब हो गया है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसको विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। क्यों? सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग क्यों था और द्वापर कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग क्यों हुआ? कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी, और यहाँ इन देहधारी धर्मगुरुओं ने क्या करवाई दिया? क्या योग सिखाया? योग ही उल्टा सिखाई दिया। विभिचारी दृष्टि योग सिखाई दिए। तो विभिचारी दृष्टि योग से क्या अब विभिचारी दुनिया की स्थापना होगी और ही दुनिया विकारी बन गई। तो बाप आकर इस पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कर रहे हैं। अभी मनुष्य महान दुखी है, बात मत पूछो, त्राहे त्राहे करते हैं, रोते पीटते रहते हैं। अनेक धर्म है, सत्युग में था एक धर्म जो एक बाप ही स्थापन करते हैं। गीता में कृष्ण भगवान वाच्य लिख दिया है, ये है एक ही भूल। उन्होंने गीता का भगवान बना दिया है कृष्ण ब्रह्मा को। ब्रह्मा का स्वरूप जो है वो गीता का भगवान नहीं है, वो तो कृष्ण बच्चा बुद्धि है। परमात्मा बाप ने जो महावाक्य उच्चारे उन महावाक्यों के गुह्यार्थ को भी वो बच्चा नहीं समझ सकता। जैसे बाप ने बोला कि 10 वर्ष में इससे पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। 66 में बोला, चित्र भी छपाए गए, ज्ञानामृत में भी छपाया गया, मुरलियों में भी छपाया गया, लेकिन छपाने वालों ने उसका गुह्य अर्थ नहीं समझा कि 76 में कौन सा विनाश होगा, कौन सी दुनिया का विनाश होगा, कहां से विघटन की शुरुआत होगी। तो बहिर्मुखी बुद्धि होने के कारण, जो असली बात है बच्चा बुद्धि होने के कारण, वो ब्रह्मा ही नहीं समझ सके तो ब्रह्मा के वो बच्चे कैसे समझेंगे। तो एक ही भूल हो गई कि गीता का भगवान किसको मान लिया, कृष्ण को। अर्थात संगम युग में का क्या नाम, कृष्ण का संगम युग में नाम क्या हुआ, ब्रह्मा। ब्रह्मा के रूप को ही उन्होंने गीता का भगवान मान लिया। अरे गीता माता है तो जरूर चैतन्य माता है, और गीता पति भगवान है तो जरूर चैतन्य है। पति है, माता है तो जरूर बच्चा भी होगा। तो यज्ञ के आदि में ही ये फाउंडेशन पड़ चुका था, गीता पति भगवान जो पहला पहला रूप, जिस रथ को पूरी बंगाल से उठाया गया पहली पहली बार, परमात्मा ने पहली बार जिसमें प्रवेश किया, वो स्वरूप हुआ गीता पति। उस पति ने फिर अपनी बन्नी बनाई गीता माता, वो सब शास्त्रों की माता है, सबका माई बाप है। तो हो गई जगत जननी, जगत माता, जगदम्बा। इसलिए एक वाणी में बोला था, गीता तू सच्ची गीता है। उस समय बैठी हुई थी साउथ एक्सटेंशन की गीता, गोपाल की युगल, तो उन्होंने समझ लिया वो गीता। बाप तो हर बात हद और बेहद के अर्थों वाली बोलते हैं। जो हद की बुद्धि वाले हैं वो हद के अर्थ उठा लेते, और बेहद की बुद्धि वाले जरूर बेहद का अर्थ उठा लेंगे, तो बेहद की दुनिया में जाने वाले बनेंगे। तो बोला कि एक ही भूल हुई है, परमपिता है परमात्मा निराकार, और उनका नाम है शिव, और उन्होंने साकार का नाम डाल दिया। गीता का भगवान कौन, साकार श्री कृष्ण माना साकार ब्रह्म, उसी रूप को उन्होंने गीता का भगवान समझ लिया। ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं होगा जो निराकारी स्टेज वाला हो, क्योंकि बोला है बाप होता है निराकार और माता होती है साकारी। जितने भी धर्म पिताए हैं वो सब निराकारी स्टेज वाले, उनके चित्रों को ध्यान से देखो। महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, चित्र को देखने से ही उनकी निराकारी स्टेज प्रत्यक्ष हो जाती है, और बाप भी ब्राह्मणों की दुनिया में निराकारी स्टेज के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा, सिर्फ ज्ञान के लेन देन के द्वारा नहीं प्रत्यक्ष होगा। कि ज्ञान का तो जितना बुद्धि का विस्तार होता है उतना तिया पैंचा निकलता चला जाता, बाल में से खाल निकलती चली जाती। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को पहचान नहीं सकते पूरा। लेकिन वो निराकारी स्टेज जो बापों का भी बाप है वो उस स्टेज में संसार के सामने प्रकट होगा और सारी दुनिया को निश्चय बैठ जाएगा। तो ये एक बड़ी भारी भूल हो गई कि उस साकारी स्टेज वाले ब्रह्मा को ही निराकार भगवान मान लिया, निराकारी स्टेज वाला। क्योंकि जो निराकारी स्टेज वाला होगा उसका देह से अटैचमेंट ही नहीं होगा, और जिसका देह से अटैचमेंट नहीं होगा उसका हार्ट फेल नहीं हो सकता। इसलिए मुरली में बोला हुआ है योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता, उनका हार्ट मजबूत होना चाहिए या कमजोर होगा। अगर कमजोर हार्ट वाले योगी होंगे तो जो विनाश की दुनिया में विफला होगा उसका मुकाबला कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। ब्रह्मा को तो सिर्फ साक्षात्कार मात्र हुआ था विनाश का और रोने लग पड़े थे। तो ऐसे कोमल दिल वाली आत्माएं नई दुनिया का सृजन नहीं कर सकेंगी। नई दुनिया बनाने के लिए बहुत पावरफुल सोल चाहिए जो हर प्रकार की परिस्थितियों का, समस्याओं का, वायुमंडल का मुकाबला कर सके। तो एक ही ये भूल हो गई जो साकार को गीता का भगवान मान लिया। परमपिता परमात्मा है निराकार, उनका नाम है शिव। आत्मा का नाम भी एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, शरीर का नाम बदलता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल जाएगा। तो परमात्मा शिव ने भी दादा लेखराज का शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर धारण किया तो नाम क्या बदल गया? है प्रजापिता ब्रह्मा तो वास्तव में उसे ही कहा जाएगा जो पिता का कार्य करे। यज्ञ के आदि में जिसने बीजारोपण किया, बीज बोया, तो वो पिता हुआ। और अंत में जो बच्चों को वर्षा देने का कार्य करे, करके दिखाए, तो वो प्रजापिता कहा जाएगा। बाकी बीच में मध्य में पार्ट है शंकर का, शंकर अर्थात मिक्स। तीन सोल मिक्स होती है एक शरीर में, कभी कोई पार्ट बजाती, कभी कोई पार्ट बजाती। तो ब्रह्मा की सोल चंद्रमा के रूप में दिखाई जाती, तीसरे नेत्र के रूप में शिव दिखाया जाता। तो एक ही शरीर और तीन व्यक्त होने वाली आत्माएं, पार्ट बजाने वाली आत्माएं। तो जैसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, वैसे परमात्मा भी ब्रह्मा का शरीर छोड़ फिर जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो शंकर नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है और वही परमात्मा पार्ट है। अगर ब्रह्मा परमात्मा पार्ट होता तो संसार में उसकी मूर्तियां मिलती, बड़ी बड़ी जो खुदाइयां हुई हैं देश और विदेश में, उसमें ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं मिली हैं। किसकी मूर्तियां मिली हैं? नग्न शंकर की, तीर्थंकर की मूर्तियां मिली हैं। जितनी ज्यादा तादाद में ये नग्न मूर्तियां मिली हैं निराकारी स्टेज की यादगार, उतनी मूर्तियां और किसी देवता की नहीं मिली। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा तन लेता है तो नाम भी बदल जाता है। बाबा का नाम एक शिव बाबा, जब आत्मा है आत्मिक स्टेज में जब पार्ट बजाता है निराकारी स्टेज में, तो शिव बाबा को शारीरिक नाम नहीं मिलता। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है उनके शरीर का नाम पड़ता है। बाप कहते हैं मेरा तो एक ही नाम है, बल मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है ना, जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूँ। प्रजा पिता तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजा कितनी है? 500 करोड़। तो 500 करोड़ की प्रजा जितनी भी है उस सबको अपनी आत्मा के पार्ट का पता चलेगा परमात्मा बाप के द्वारा। उन आत्मा